Very happy to be with you all together again.
और एक बार आपके बीच में आकर बहुत ही मुझे खुशी महसूस हो रही है.
Always look forward to coming and having fellowship with you all.
और हमेशा आपके साथ आकर संगति करना मुझे, मैं हमेशा उसको देखता हूँ.
And I felt very at home among you.
और आपके बीच में आकर मुझे बहुत ही अच्छा, एक घर में घर जैसे महसूस होता है.
So we praise the Lord for this time that we can be together again.
और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि एक साथ में एक समय को हम इस तरह से आ सके.
I want to share with you this evening something that God has put on my heart.
और आज शाम को मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है.
Not just for the church back home, but for myself.
और केवल कलीसिया या मेरे लिए खुद के लिए नहीं.
And I believe that God wants us all.
लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों को चाहता है.
To come to this recognition.
ताकि हम इस एहसास तक पहुँच सके.
We just prayed your kingdom shall reign forevermore.
ताकि उसका जो राज्य वो हमेशा तक बना रहे.
If you substitute the word kingdom whenever you come across it in the New Testament for government.
और ये नए नियम के अंदर जो राज्य है उसका मतलब क्या है, वो सरकार को दर्शाता है.
You understand better. You will understand better.
और तब उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे.
Because we have a government, we have a president, we have a prime minister.
और हमारी एक सरकार होती है जिसके अंदर एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री होता है.
In those days, in the days of the Roman emperor, the emperor was there. And there were kingdoms.
और उस समय के अंदर रोमी साम्राज्य हुआ करता था, उसके अंदर एक सम्राट हुआ करता था, उनका राज्य था.
Not many kingdoms today, but there are governments.
और उस समय एक सरकार थी.
And Jesus taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name.
और यीशु मसीह ने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया कि पिता तेरा राज्य जो है स्वर्ग में और जैसे पृथ्वी पर तेरा राज्य आए.
Not something that we pray in a parrot fashion.
और इस तरह से नहीं कि हमें कोई खास फैशन में हम प्रार्थना करते, उस प्रकार नहीं.
I pray that prayer many times.
और इस प्रार्थना को मैं बहुत बार दोहराता हूँ.
And every time I pray that prayer, Father, hallowed means separated be your name.
और मैं इस प्रकार कहता हूँ कि हे पिता तेरा राज्य आवे.
From all the other names on the earth.
और हर नाम जो है उस इस पृथ्वी के ऊपर उस नामों में.
Your kingdom come.
और तेरा राज्य आए.
Your government come.
और तेरी सरकार आए.
As it is in heaven, let it be on earth.
और जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर होने पाए.
That's what we are praying for.
और इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं.
The government of God.
और परमेश्वर की सरकार.
And one day, fill this whole world.
और इस एक दिन इस संसार को पूरी तरह से भर देगी.
As the waters cover the sea.
और जैसे एक समुद्र जो that, पानी से भरा हुआ होता
है. That day is not very far.
और वो दिन बहुत दूर नहीं है.
But it's not something that I just look forward to.
और ये इतना ही नहीं कि उसकी ओर मैं देखता हूँ.
I want to ask you and me, are we under the government of God?
और मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या हम उस परमेश्वर की सरकार के अधीनता में आज पाए जाते हैं.
It's very important.
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
And all that is happening in these days.
और ये सारी चीजें जो आज के दिनों में हो रही
हैं. I don't know if you recognize that our country is going through a crucial time.
और आप जानते हैं, पहचान पाते या नहीं, लेकिन हमारा देश जो है एक बहुत ही कठिन हालातों से गुजर रहा है.
The elections that are taking place are crucial.
और ये इलेक्शन जो हो रहे हैं बहुत ही एक क्रूशियल समय है.
Not just for the country and the people.
और केवल देश के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं.
But for the church.
लेकिन एक कलीसिया के लिए.
I don't know if you recognize that.
मैं आप समझते हैं कि आप कलीसिया में इस बात को समझ पाते हैं नहीं.
Many times through these 40 plus years, God has called us as a church to pray for the country, to pray for the government.
और पिछले 40 सालों के अंदर परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हमारे देश के लिए, सरकार के लिए हम प्रार्थना करें.
I don't know how many of us have been burdened to pray for these elections that are going on at this time.
और हम नहीं जानते कि कितने सारे लोगों ने इसके लिए, इस इलेक्शन जो इस समय चल रहा है उसके लिए प्रार्थना किया है.
Because everything that happens concerns the church.
और हर एक चीज जो होती है वो कलीसिया से जुड़ी हुई होती है.
The church is not peripheral to the world.
और कलीसिया जो है वो संसार से बाहर या नहीं है.
That's what it says in Ephesians.
और इफिसियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है.
Living Bible translation.
और लिविंग अनुवाद में लिखा है.
What it means is the church is not around the world. That's what it means.
और इसका मतलब ये है कि संसार के बाहरी तौर पर कलीसिया नहीं है.
The world is peripheral to the church.
लेकिन उसके विपरीत है कि जो संसार जो है वो कलीसिया के इर्द गिर्द लगा
the
हुआ
world
है.
is around the church.
और कलीसिया बीच में है और जो संसार जो है उसके इर्द गिर्द है.
So everything God determines and God plans is with the church in mind.
और हर एक चीजें जो परमेश्वर निर्धार करता है या योजना को बनाता है वो कलीसिया के द्वारा ही करता है.
What happens in these elections?
और इन इलेक्शन में जो होने जा रहा है,
what will happen in the coming days,
और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है,
not only in India but all over the world,
और केवल भारत देश के अंदर नहीं लेकिन पूरे विश्व भर के अंदर,
is with the church in mind.
लेकिन उस कलीसिया को ध्यान में रखते हुए होगा.
God has the church's interest at heart more than anything else.
और किसी भी चीज से बढ़कर परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया के उस चीज को उसकी उसको अपने ध्यान में उसकी रुचि को रखता है.
That's why I believe it's the responsibility of the church to pray for our nation and to pray for the government.
इसलिए हमारी कलीसिया के रूप में एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सरकार के लिए हमारे हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकें.
That's what we are told in 1 Timothy 2.
और पहले तिमोथियुस 2 के अंदर यही हमसे कहा गया है.
We pray for the government, we pray for the rulers and those in authority. That we in the church can live a quiet and peaceable life in all godliness.
और वहाँ लिखा गया है कि हम सरकार के लिए जो हमारे अधिकार में उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि हम उस शांति के अंदर बने रह सके.
And it says this is acceptable to God and.
और ये परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है.
Because God wants all men to be saved. One, you can turn to that word.
और उस वचन को हम देखेंगे.
1 Timothy 2.
पहला पत्रस 2 अध्याय.
It says, first of all, I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgivings. Be made on behalf of all men for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth.
और माफ करना, पहला तिमोथियुस दूसरा अध्याय एक वचन से. अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए. ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है.
God wants all men to be saved.
परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति का उद्धार हो.
But all men don't get saved.
लेकिन हर व्यक्ति उद्धार नहीं पाते.
You've heard many times we don't pray that the whole of India gets saved. I don't have faith that the whole of India can get converted.
और हम लोग प्रार्थना करते हैं तो लाखों लोग नहीं जाते. या मेरे पास ऐसा विश्वास नहीं कि हर एक लोग विश्वास उद्धार में आए.
But God's will is that nobody should perish, but all should come to life.
लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार में आए और किसी का नाश न हो.
All should come to the knowledge of the truth.
और हर व्यक्ति उस सच जो सच है उसकी पहचान.
What is that truth then?
वो सच्चाई क्या है?
In verse 5.
वचन 5 में.
There is one God.
और एक ही परमेश्वर
है. One mediator also between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time.
और 5 वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवे अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है.
So it's a great responsibility that we in the church, we don't think, well, that's okay, you know, things don't change, everyone is corrupt. All governments are corrupt, all parties are corrupt, so we don't pray.
तो एक कलीसिया होने के नाते हमारे ऊपर एक बहुत जिम्मेदारी बनती है. ऐसा ना सोचे कि ऐसे ही चलता है, बहुत सारा भ्रष्टाचार है, सब लोग ऐसे ही, ऐसा नहीं.
We fail in fulfilling God's purpose.
और हम कई बार परमेश्वर को उद्देश्य को पूरा करने के लिए असफल हो जाते हैं.
There were times in the past when God burdened us and called us to fast and pray for the country and for a government at that particular time.
और ऐसे समय के अंदर परमेश्वर ने हमको बुलाया है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, उपवास के साथ उसके लिए हम धरे रखे.
And we saw answers to prayer.
और हमने उस प्रार्थनाओं के उत्तर को देखा है.
Supernatural answers.
और बहुत ही अलौकिक प्रार्थनाओं के उत्तर.
God bringing down a government that was opposed to the gospel being preached and people getting converted.
और कई बार परमेश्वर ने ऐसी सरकार को नीचे किया जो कई बार जो सुसमाचार का प्रचार या लोगों को प्रचार इस प्रकार की बातों को जो विरोध करते थे.
God removing men who were enemies of the gospel and enemies of the church.
और जो लोग सुसमाचार और कलीसिया के विरोध में थे उन लोगों को परमेश्वर ने नीचा किया.
So what do we do?
तो हम क्या करें?
We pray.
हम प्रार्थना करें.
In Paul's time they had a wicked evil emperor called Nero.
और पौलुस के समय में बहुत ही एक दुष्ट या बहुत ही क्रूर ऐसा एक सम्राट था जो नीरो जिसका नाम था.
Persecuted the church.
और उसने कलीसिया को सताया.
Persecuted Christians.
और मसीही लोगों को उसने सताया.
Christians were thrown to the lions.
और मसीही लोगों को उस शेरों के सामने डाल दिया जाता.
So, what is our responsibility?
और आज हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है?
That we don't go through persecution.
तो क्या हम सताव का सामना नहीं करेंगे?
The important thing is whether there's persecution or no persecution that we realize who rules the nations.
और सताव हो या ना हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि राष्ट्रों के ऊपर कौन राज्य करता है.
Who is in sovereign control?
और कौन उस सर्वसत्ता और नियंत्रण को रखता है?
God's will is that we live a quiet and peaceable life in all godliness and sincerity.
और परमेश्वर की यह इच्छा है कि हम उस भक्ति में जीवन के अंदर गंभीरता के साथ उस शांति में जीवन में बने रहे.
But sometimes God allows persecution.
लेकिन कई बार परमेश्वर की सताव, परमेश्वर सताव की अनुमति देता है.
Persecution will come.
और सताव आएगा.
Tribulation will come.
और संकट उपद्रव आएंगे.
But God uses it to purge and to cleanse our the church and to make us who are His disciples strong.
और परमेश्वर इन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है ताकि हमको वो शुद्ध करके उसके अनुयायी या उसके शिष्य बना सके.
So when we pray, Father, Hallowed be your name, your government come, your will be done on earth as it is done in heaven.
और जैसे हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम जैसे आसमान में वैसे इस धरती के और के ऊपर तेरा राज्य आए.
It's good we realize who we are praying to.
और हम इस बात को एहसास करते, पहचान लेते कि हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं.
Psalm 103.
103 भजन संहिता में लिखा है.
Verse 19.
103 भजन संहिता.
Says the Lord has established his throne in the heavens. And his sovereignty, his supreme power and authority rules over all.
यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है.
And in Colossians chapter 2 verse 10.
कुलूसी 2:10.
It says, in him, that is in Jesus, you have been made complete and he is the head over all rule and authority.
और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है.
In the living Bible it says you are filled with God through your union with Christ. He is the highest ruler over every other power.
और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में आप भरपूर हो गए और वो परमेश्वर जो है वो सर्वसत्ता और अधिकार रखने वाला है.
And this one is your father and my father.
और ये जो है वो आपका और मेरा पिता है.
Do we recognize that?
और क्या हम इस बात को पहचान पाते हैं?
When we pray to him,
और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं,
and we don't see that God calls us as a church to pray for our nation, to pray that God will give us a good government and good rulers.
और हम इस चीज को प्रार्थना में भूल जाते हैं कि हम इस चीज को प्रार्थना करें कि परमेश्वर में ऐसी अच्छी सरकार दे ताकि हम उस शांति में बने रहें.
That is God's will.
और ये परमेश्वर की इच्छा है.
And I wanted to see what God, through the Holy Spirit, said to a young man. In 1 Timothy.
So पहले तिमथी में एक जवान के द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा हमने देखा.
And that's the word on my heart for us this evening.
और आज शाम को ये वचन मेरे मन में आप सबों के लिए है.
That's the word for us as a church.
और ये वचन जो है उसकी कलीसिया के लिए है.
These are Paul's last words.
ये पौलुस के अंतिम वचन है.
1 Timothy and 2 Timothy are some of the last words he wrote.
और पहला दूसरा तिमथी जो है उसने जो अंतिम उसके जो वचन लिखे पौलुस.
What does he say to a young man?
और वहां पे उस जवान व्यक्ति से वो क्या कह रहा है.
He says in verse 11.
11 वचन में.
Go back in verse 10.
10 वचन.
Says the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith, pierced themselves with many griefs. But flee from these things. 1 Corinthians 6:11. You man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Read that first part.
पहला तिमोथियुस 6:10 से आगे. क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया. पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों में भाग और उस धर्म भक्ति विश्वास से प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों के गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था.
Fight the good fight of faith and lay hold of eternal life.
और 12 वचन में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और अनंत जीवन को धर के रख.
And if you've been in the church, you would have heard what is eternal life.
और यदि आप कलीसिया में हैं तो आपने सोच सुना होगा कि अनंत जीवन क्या है.
Jesus himself tells us what eternal life is in John 17.
और यूहन्ना 17 में यीशु मसीह ने बताया कि अनंत जीवन क्या है.
In the very first verse, this is eternal life to know God and Jesus Christ whom you sent.
और वो यूहन्ना 17 पहले वचन में लिखा है कि यही अनंत जीवन है कि उसकी पुत्र ये परमेश्वर के जानना है और जिसके यीशु मसीह उसके पुत्र के द्वारा.
It's not living forever.
और ये अनंत काल जो है वो सर्वदा रहना वो नहीं है.
To know God,
परमेश्वर को जानना.
All shall know him,
और हर व्यक्ति उसको जानेगा.
From the least to the greatest,
और छोटे से बड़े तक.
That is the blessing of the new covenant,
और ये नए नियम की आशीष है.
All shall know him,
और हर व्यक्ति उसको जानेगा.
To know God,
वो परमेश्वर को जानेगा.
And Jesus Christ whom he has sent,
और यीशु मसीह जिसको उसने भेजा है.
Jesus Christ who has revealed God to us, revealed the Father to us.
और यीशु मसीह ने जो जिसने पिता और परमेश्वर को हम पर प्रकट किया.
This is eternal life.
और यही अनंत जीवन है.
Paul tells Timothy, fight the good fight of faith.
और यहाँ लिखा है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़.
Lay hold of the eternal life to which you were called to.
और जिस अनंत जीवन के लिए तू बुलाया गया उसको तू पकड़े रख.
And you testified in front of many witnesses.
और बहुत सारे गवाहों के सामने तूने अच्छा अंगीकार किया है.
Now he tells him another thing.
और यहाँ पे वो आगे कहता है.
Verse 13.
13 वचन.
He says, I charge you in the presence of God who gives life to all things and of Christ Jesus who testified the good confession before Pontius Pilate that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ which he will bring about at the proper time he who is the blessed and only sovereign, the King of kings and the Lord of lords.
और मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा जो परम धन्य एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है.
Keep the commandment without stain.
और यहाँ पे लिखा है उस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख.
And Paul said this, solemn, I charge you. In the presence of God, they're very solemn, serious words.
और पौलुस उसको बहुत ही गंभीर शब्दों में कहता है कि मैं तुझे आज्ञा देता हूँ.
Who gives life to all things and of Christ Jesus who testified the good confession before Pontius Pilate.
और वहाँ कहता है कि वो उस अनंत जीवन को धर और जिसके लिए तू बुलाया गया है और उस अच्छे उसका अच्छा अंगीकार किया.
And that's a solemn charge that was not just to Timothy but to you and me if we claim to be disciples of Jesus.
और ये जो है आज्ञा केवल तिमोथियुस को नहीं लेकिन आपको और मुझे दी गई है.
He reminded Timothy of that good confession that Jesus made before Pontius Pilate.
और यहाँ पर उस चीज को यहाँ पे गवाह करके बताया गया है कि पुंतियुस पिलातुस के सामने उसने उसका अच्छा अंगीकार किया.
What is that good confession?
और वो क्या है?
And how I imagined as Jesus stood there before Pontius Pilate, so dignified, even though he was bleeding, even though there was a crown of thorns on his head, even though they had battered him, he stood there so dignified. And in John chapter 10.
और यूहन्ना 10 के अंदर हम देखते हैं कि कैसे उस पिलातुस के सामने यीशु कांटों का ताज उसके सर पर था लेकिन फिर भी कितनी गरिमा के साथ वो उस पिलातुस को जो उत्तर देता है.
Try to imagine this, you know, what when he stood before Pilate there.
और आप सोच के देखिए कि किस चीज ने उसको उस पिलातुस के सामने इस प्रकार खड़ा किया.
And in John 18, if you go back before we come to John 19, John 18,
यूहन्ना 18 में,
at the last end of verse 33, Pilate said to him, "Are you the King of the Jews?"
33 वचन में लिखा है पिलातुस ने फिर किले के भीतर गया यीशु को बुलाकर क्या तू यहूदियों का राजा है.
And Jesus says, "Are you saying this by on your own, or did somebody tell you about me?"
और यीशु ने उत्तर दिया तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा है.
I want to take you back there and see, you know, Jesus standing before Pilate, so dignified, so stately.
और मैं इस चीज की कल्पना करना चाहता हूँ कि किस प्रकार यीशु मसीह पिलातुस के सामने उस गरिमा के साथ खड़ा है.
Pilate says, I'm not a Jew.
और पिलातुस कहता है कि मैं यहूदी नहीं हूँ.
Your own nation and your people have delivered you up to me. What have you done?
और यहाँ पे लिखा है कि क्या मैं यहूदी हूँ तेरी ही जाति और तेरे प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा.
Listen to this, my brothers and sisters.
और मेरे भाई और बहनों इस बात को आप सुने.
Jesus stood there and answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting, so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this kind, is not from here.
और यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं।
My government is not of this world. That's
और मेरा मेरी जो सरकार है संसार की नहीं है।
Says my government is not from here.
और मेरी जो संसार वो यहाँ की नहीं है।
Otherwise my servants will be fighting.
नहीं तो मेरे जो सेवक है वो यहाँ लड़ाई करते हैं।
I asked you a little while ago, are we under God's government?
और जैसे मैंने आपको पहले पूछा कि क्या हम परमेश्वर की सरकार के अधीनता में हैं?
How do I know that?
और किस प्रकार मैं उस चीज को जानूंगा?
I'm under God's government.
कि मैं परमेश्वर की सरकार के अधीनता में हूँ।
Things go wrong in the office.
और जब ऑफिस के अंदर जब चीजें बिगड़ जाती है या ठीक नहीं है,
things go wrong among family members, among relatives, over money, over property.
और परिवार के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, पैसों के बारे में या संपत्ति के बारे में जब चीजें सही नहीं होती है, कुछ गलत हो जाता है वहाँ,
and many other situations,
और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में,
with your friends,
मित्रों के बीच,
with your neighbors,
और पड़ोसियों में,
and with the brothers and sisters,
और भाई और बहनों के बीच में,
it's not what I say and get up and testify in the meetings.
और जिस प्रकार मैं बोलता हूँ उस प्रकार नहीं,
what is my reaction?
लेकिन मेरी प्रतिक्रिया क्या है?
Do I fight back?
और क्या मैं उनके साथ लड़ाई करता हूं?
We have to examine our lives to see whether we are really under the government of God.
और हमें अपने जीवनों को जांचना है कि सच में हम परमेश्वर की सरकार की अधीनता में जी रहे हैं या नहीं।
Between husband and wife.
और पति और पत्नी के बीच में।
Am I always wanting to fight back and get the last word?
और क्या मैं हमेशा अपने अपनी चीज को रखते हुए, लड़ाई करते हुए अपनी ही चीज को सही ठहराना चाहता हूँ?
It becomes very evident which government I'm under.
तो इससे बहुत ही जल्दी साबित हो जाता है कि किस सरकार की अधीनता में हम जीवन जी रहे हैं।
Jesus said, my government is not from this world.
यीशु ने कहा कि मेरा राज्य जो है, मेरी सरकार इस संसार की नहीं है।
If it were so, my servants would be fighting.
यदि ऐसा होता तो मेरे सेवक लड़ाई लड़ते यहाँ।
So, do I fight for my rights?
और क्या मेरे अधिकारों के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ?
There's no harm in going to your boss and asking for a raise or asking, you know, to be relocated. You're committing no sin there.
और इसमें कोई पाप की बात नहीं कि अपने बॉस के पास जाकर आप वेतन को बढ़ाने की बात करें या कहीं आपको कहीं जाना है बाहर तो उसको आप बताएं।
But my attitude to people.
लेकिन मेरा स्वभाव जो लोगों के प्रति है,
is it easy for people to pick a fight with me?
और ये बहुत ही आसान क्या हो जाता है कि लोग मेरे साथ आकर झगड़ा करते हैं?
That will show me which kingdom I belong to.
और तो ये साबित करता है कि किस सरकार के अधीनता में मैं हूँ?
Which government I'm under.
और किस सरकार के अधीनता में मैं हूँ?
And Paul told Timothy.
और पौलुस ने तिमोथी से कहा,
Remember the good confession that Jesus made before Pilate.
और जैसे यीशु मसीह ने अपना एक अंगीकार जैसे पिलातुस के सामने किया,
Keep that commandment without stain.
और उस जो आज्ञा को है उसको निष्कलंकता के साथ तू रख।
How you live your life in this world?
और इस संसार में तू किस प्रकार जीवन जीता है?
How you conduct yourself at home and in the office and with the neighbors and with your friends?
और आपके परिवार के अंदर, आपके दफ्तर के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर किस प्रकार का जीवन आप जीते हैं?
If we slip up and fall like we all do, are we quick to get up, humble ourselves, maybe apologize? Say, I'm sorry, please forgive me, and get back on our feet again. Or am I waiting for the next occasion to get right with that person?
कई बार बन सकता है कि हम फिसल कर गिर जाए, लेकिन फिर नम्रता के साथ क्या मैं तुरंत ही वहां से उठता हूँ या फिर अपने आप को वहां पर वापस ठीक करता हूँ या फिर ऐसा नहीं करते हुए मैं आगे की ओर अवसर को देखता हूँ?
If I'm under the government of God, God will give me grace.
यदि मैं परमेश्वर की सरकार के अधीनता में हूँ तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा।
It will be less possible for people to pick a fight with me.
और ये बहुत ही असंभव बात होगी कि लोग आकर या लोगों के साथ मैं झगड़ा करूं।
I'll become a man of peace.
और मैं शांति का एक मनुष्य बन जाऊंगा।
You'll become a woman of peace.
और मैं शांति की स्त्री बन जाऊं।
If I'm quick to humble myself.
और यदि मैं बहुत ही जल्दी से मैं अपने आप को नम्र बन सकता हूं।
Lord, I don't want to be this way.
और प्रभु मैं इस प्रकार आगे नहीं जाना चाहता।
I want to be under your government.
लेकिन मैं आपके अधीनता में जीना चाहता हूँ।
So important, my brothers and sisters.
मेरे भाई और बहनें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है।
That we don't just pray that prayer, our Father, hallowed be your name, your kingdom come.
और केवल हम इस प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना न करें, प्रभु स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए।
Is that true in my personal life?
लेकिन क्या मेरे व्यक्तिगत जीवन में यह सच है?
The way I conduct myself.
और जिस प्रकार मैं अपने आप को लोगों के सामने दर्शाता हूँ या स्वभाव में रखता हूँ,
things that happen in the church,
और कलीसिया में जो चीजें होती है,
we work together,
और जब हम साथ में काम करते हैं,
we rub shoulders with each other,
और एक दूसरे से हम बात करते हैं,
how do I respond,
और किस प्रकार मेरी प्रतिक्रिया होती है,
am I under the government of God,
और क्या मैं परमेश्वर की सरकार के अधीनता में हूँ,
if I am,
और यदि मैं हूँ,
the next chapter 19,
और 19 जो अध्याय है,
that is chapter 18 and verse 36 is not all that good confession.
और केवल 18 और 36 वचन में जो हमने देखा उतना ही अंगीकार यीशु मसीह ने किया उतना ही नहीं है.
The good confession that Jesus made.
लेकिन अच्छा अंगीकार जो यीशु मसीह ने आगे किया. Chapter 19. 19 अध्याय में.
Here and there he is. Verse 5. Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to him, "Behold the man." Verse 6. 19
तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष.
And there again there was a dialogue between Jesus and Pilate.
और यहाँ पर भी हम पिलातुस और यीशु मसीह के बीच में वार्तालाप देखते हैं.
They were out to finish him off.
और यहाँ पर उसको वो खत्म करने ही वाले हैं.
The religious leaders were out to see him. They had already Caiaphas prophesied that it's better that one man dies for the nation than for everybody else to perish.
और यहाँ पे लिखा है कि जैसे जुमा के धार्मिक जो अधिकारी थे वो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना ही चाहते थे.
He didn't know that he prophesied.
और हम उसकी भविष्यवाणी को नहीं जानते.
But was that all that Jesus was going to do in dying for his nation?
और केवल उतना ही था कि यीशु मसीह अपने राष्ट्र के लिए जाकर और लोगों के लिए उसने मृत्यु को लिया.
Goes on to say that he died to gather together the children of God who were scattered.
लेकिन यीशु मसीह जो उसके लोग उसके बच्चे जो भटके हुए थे या अलग अलग दिशा में थे उसको एक करने के लिए.
Now listen, imagine in your mind, there's Jesus standing.
और आप अपने मन में कल्पना करके देखिए यीशु मसीह वहां खड़ा है.
And you know the Jews said, we have a law, verse 7, by that law he ought to die because he made himself out to be the son of God.
और सात वचन में यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है.
And Pilate was scared when he heard that.
और पिलातुस ने ये बात सुनी और डर गया.
And he kept asking questions.
और उसने वहां पर और भी उसको प्रश्न
पूछे. Jesus gave him no answer.
और यीशु मसीह ने वहां पे कुछ भी उत्तर नहीं दिया.
And then listen to this in verse 10.
और 10 वचन में.
So Pilate said to him, "You do not speak to me. Do you not know that I have authority to release you and I have authority to crucify you?" Jesus answered, "You would have no authority over me unless it had been given you from above. For this reason, he who delivered me to you has the greater sin."
और इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने तुझे मेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है.
You see how what a wonderful thing it is to be under the government of God, to be under the authority of God.
और कितनी अद्भुत बात यह हम देखते हैं कि कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर के अधिकार या उसकी सरकार के अधीनता में जीवन जीने में.
I can live without fear.
और मैं बिना डर के जीवन जी सकता हूं.
Whatever the situation.
कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो.
Whatever the future.
और कोई भी भविष्य की बातें क्यों
ना, I am put into a situation,
और कोई भी ऐसी हालात हो,
I am threatened,
और जहां मुझे धमकी मिले,
maybe in your office,
ऑफिस में हो सकता है,
your boss wants to sack you,
और आपका बॉस जो है आपको नौकरी से निकाल देना चाहता है,
maybe you don't get a promotion,
ये आपको शायद प्रमोशन नहीं मिला,
maybe the others are ganging up against you to get you out,
और बहुत सारे लोग हैं जो आपके विरोध में योजना बना रहे
हैं.
कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो,
whether in the home or in the office,
और घर में हो सकता है या ऑफिस में हो सकता है.
We believe that God alone has authority and nobody can have authority over me unless it was given to him by God.
और क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के बिना उसके अधिकार के नियुक्ति के बिना कोई भी मुझ पर उस अधिकार को नहीं चला सकता है?
I believe we need this for the coming days.
और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में हमें इसकी जरूरत है.
You need to recognize this.
और हमें इसको पहचानने की जरूरत है.
द that nobody has authority over you to do any harm or evil to you unless it were given to him by God.
Aur jab tak parmeshwar ne us adhikar ko na diya koi bhi vyakti apna hamare jeevan ke andar koi hani ko nahi kar sakta.
Jesus was so confident there.
Aur yeshu masi yahan par bahut hi confidence se bhara hua tha.
That is how we are to live in this world.
Aur isi prakar is sansar mein hame jeena hai.
We are not to be slaves of fear.
और हमें किसी गुलामी में या उस डर में जीने की नहीं है.
God has not given us a spirit of slavery leading to fear again.
और परमेश्वर ने हमें गुलामी का या डर का आत्मा नहीं दिया है.
I'm not a slave.
और मैं गुलाम नहीं हूँ.
I'm a son of the living God.
लेकिन मैं जीवित परमेश्वर का संतान
हूँ. Say that to yourself.
और अपने आप से इस बात को कहे.
Say that to the devil.
और शैतान से इस बात को कहे.
I don't have to go and say that to my boss, but I say that in my mind as you stand before your boss.
और जैसे आप बॉस के सामने खड़े रहते हैं, आपको उसको शब्दों से कहना है, लेकिन अपने मन में इसको कह सकते हैं.
Or you stand before some worldly authority and they are going to do something to you. You have no authority over me unless it were given to me.
और यदि हो सकता है कि आपके कोई बहुत ही दुनिया के अधिकारों के सामने आप खड़े हैं, अपने मन में कह सकते हैं कि जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई अधिकार तेरा मुझ पर नहीं है.
I am a son of the living God.
और मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ.
You are a son of the living God.
और आप जीवित परमेश्वर के बेटे हैं.
My sisters, you are a daughter of the living God.
और मेरी बहनें, आप जीवित परमेश्वर की बेटी हैं.
If you come in through repentance and faith to Jesus.
और आप मन फिराने के द्वारा उस विश्वास के द्वारा उसके पास आते हैं.
You belong to the family of God.
और परमेश्वर के परिवार के आप भाग हैं.
You are under the government of God.
और परमेश्वर की सरकार के अधीनता में आप हैं.
Believe this.
इस चीज को आप विश्वास करें.
You are a son, you are a daughter of God.
आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं.
Nobody has authority over you unless it were given from God.
और जब तक कि परमेश्वर का अधिकार न हो तब तक किसी का भी अधिकार या किसी भी व्यक्ति का आप पर नहीं चलेगा.
And that is why we need to pray for the government.
और इससे हमें याद दिलाता है कि हमें सरकार के लिए प्रार्थना करना है.
We need to pray for our rulers.
और हमारे ऊपर जो अधिपति या अधिकार चलाते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है.
We need to pray for this crucial election that our country is going through.
और ये जो हमारा देश जो इस इलेक्शन से गुजर रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है.
No authority.
कोई भी अधिकार.
Unless given from God.
जब तक कि वो परमेश्वर से दिया नहीं जाता.
Here's another word that often I've thought about.
और एक और वचन है जो बार बार मैंने इसको सोचा है.
That's why I decided long ago I want to be a man under authority.
और इसलिए मैंने इस चीज का निर्णय किया बहुत पहले कि मैं परमेश्वर के उस अधीनता में किसी के अधीनता में रहना चाहता हूँ.
Not only under the authority of God.
और केवल परमेश्वर के अधिकार की अधीनता में नहीं.
But under the authority of those whom God has appointed over me.
लेकिन उन व्यक्तियों के जिनके परमेश्वर ने मेरे ऊपर नियुक्त किया है उनकी अधीनता में भी मैं जीवन जीना चाहता
हूं. Whether in the church or in the office or in the home.
और हो सकता है घर में कलीसिया में. और
that I submit to that authority.
और मैं उस अधिकार के अधीनता में मैं अपने आप को सौंपता हूं.
Why? Romans 13 verse 1.
रोमियो 13:1.
In the middle of that verse. It says first, every person is to be in subjection to the governing authorities. And this is the word, middle of verse 13. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God.
और रोमियो 13:1, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं.
And verse 2 says, therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves.
और इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे.
You see how important it is, my brothers and sisters.
और आप देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है ये भाई और बहनों.
Jude warns us about people in the last days.
और इस प्रकार जो अंतिम दिनों में जो लोग हैं
will reject authority.
और जो अधिकारी है उसको वो तिरस्कार करेंगे.
Despise authority.
और उन्हें वो तुच्छ जानेंगे अधिकारियों को.
And that is why there's so much a confusion.
और इसलिए ये सारा कंफ्यूजन यहाँ पे देखने मिलता
है. That is why there are disturbances and divisions in homes and families.
और परिवार के अंदर कलीसियाओं के अंदर सारा विचलित होना ये सब की समस्याओं को हम देखते हैं.
As we do not respect the simple command that God has given us to be under authority.
क्योंकि हम परमेश्वर की साधारण आज्ञा जो यहाँ दिखे कि अधिकारियों के अधीनता में हमें रहना है उसके आज्ञा का पालन नहीं करते.
Jesus is our example there.
और यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर एक उदाहरण के अपने उदाहरण दिखाया.
When I am under the government of God, I am under the authority of God, I do not need to fear.
और परमेश्वर ने यीशु ने उदाहरण को देखा है कि जब हम परमेश्वर के उस अधिकार में उसके उस सरकार के अधीनता में जीवन बिताते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं.
Nobody can do any harm to you or to your family or try and mess up your future unless God gives them that authority from heaven.
और जब तक परमेश्वर स्वर्ग से वो अधिकार नहीं देता कोई भी व्यक्ति आपके साथ आपके परिवार के साथ कोई भी खिलवाड़ या कोई हानि नहीं कर सकता.
Have you been in situations like that?
और क्या आप ऐसी परिस्थितियों में आए हैं अपने जीवन में?
When I gave my life to Christ, I was a new believer.
और जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और मैं नया विश्वासी था.
I worked for the government.
और मैं एक सरकार के लिए काम करता
था. I was on the railways.
और मैं रेलवे में काम करता
था. I had a position of authority.
और मेरे पास एक अधिकार की एक पद था.
There was an authority over me.
और मेरे ऊपर भी एक अधिकारी थे.
And my boss.
मेरे जो बॉस थे.
Because I was not willing to fall in line with all the compromise.
और क्योंकि मैं उन सारे समझौते में नहीं पढ़ने वाला था.
Because I was not willing to give him a drinking party, to throw a drinking party.
और इसलिए मैं वहाँ पे जो शराब पीने की जो पार्टियाँ होती उसमें नहीं भाग लेने वाला था.
And he was a big burly guy.
और वहाँ पर एक बहुत ऐसा व्यक्ति था.
And I still remember his name.
और उस व्यक्ति को मैं अभी भी याद करता हूँ.
And he said to me, you cannot be here. You have to go back to your headquarters.
और उसने मुझसे कहा कि आप यहाँ नहीं रह सकते. आपको आपके हेडक्वार्टर्स में वापस जाना होगा.
I'll see that you go back.
और मैं देखता हूं कि आप वापस जाएंगे.
I was a new believer, just hardly 2 weeks, couple of weeks.
और मैं नया विश्वासी था, 2 या 4 सप्ताह महज हुए थे.
But Christ had changed my life.
लेकिन यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया.
And I had such a radical conversion.
और बहुत ही उग्र मेरा बदलाव हुआ था.
That I took a stand for Jesus.
और ताकि यीशु मसीह के लिए मैं खड़ा रहूं.
With my closest friends.
और मेरे जो खास मित्र थे.
And in the office.
और दफ्तर के ऑफिस के अंदर.
And I said to him,
मैंने उनसे कहा,
शर्मा साहब, that was his name, शर्मा साहब, you cannot, I'm willing for anything, but if God wants me here, he'll keep me here, otherwise I'm willing to go back.
और मैंने उनसे कहा कि साहब मैं अगर परमेश्वर चाहता है मैं यहाँ रहूँ तो मैं रहूँगा, अगर मैं परमेश्वर की इच्छा है कि मैं वहाँ यहाँ से जाऊँ तो मैं तैयार हूँ उसके लिए.
I didn't say it in arrogance.
और मैंने एक एक, एक ऐसे बलवा में एक
बोली
में नहीं कहा.
I believed as a new believer that God had authority over me and nothing can be done to me unless God gave permission.
और एक नया विश्वासी होने के नाते मैंने इस बात पर विश्वास किया कि कुछ भी मेरे विरोध में नहीं हो सकता जब तक कि परमेश्वर मेरे ऊपर अधिकार रखता है, वो अनुमति ना दे इस बात की.
I didn't see that before.
और मैंने इस चीज को नहीं देखा पहले.
And I can tell you a number of situations.
और ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों को मैं बता सकता हूँ.
Where God proved his authority. And if something was his will, he would keep me there.
और परमेश्वर ने अपने अधिकार को मेरे जीवन में साबित किया और परमेश्वर ने वहां पर मुझे रखा.
So it's so important.
ये बहुत ही मुख्य बात है.
That every one of us recognize the authority of God and submit ourselves to that authority, and also submit ourselves to the earthly authority that God has put over us.
ये बहुत ही अच्छी और मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर की उस अधिकार को, उसकी सरकार को जानना, उसके अधीनता में अपने आप को लाना. उतना ही नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने उस संसार के अंदर हमारे ऊपर जो अगुवे या अधिकारी नियुक्त किए, उनके अधीनता में जीवन को जीना.
Subjection is not slavery.
और अधीनता में आना इसका मतलब नहीं कि हम गुलामी में आते हैं.
I want to testify.
और मैं इस चीज की गवाही देना चाहता हूं.
Subjection and submission, there is a power that is released through you.
और अधीनता में रहने से एक सामर्थ्य जो है वो आपके द्वारा प्रकट होता है.
There is a power that God releases through us when I'm under not only His authority, but under the authority that He has put over me, whether it's in the church, the elders, whether it's my work spot, my boss, whether in the home, wife to the husband, and husband to the wife also. You heard Brother Zach say, you know, husbands be subject to your wives. That's also in Ephesians 6. You heard that message.
और हम देखते हैं कि एक सामर्थ हमारे जीवन से निकलता है जब हम परमेश्वर के ही नहीं लेकिन हमारे जो नियुक्त अगुवे जो कलीसिया के अंदर होते हैं या हमारे ऑफिस के अंदर हमारे बॉस उनके अधीनता में जब हम जीवन जीते. इफिसियों के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो पति है पत्नियों के अधीनता में रहना. जब एक दूसरे के अधीनता में ब्रदर जैक कहते हैं उसमें भी एक सामर्थ हमारे जीवन से निकलता है, प्रकट होता है.
Jesus was a man under authority.
यीशु मसीह एक अधिकार के अधीनता में था.
And therefore he recognized that whatever the Father planned for him, nobody can thwart that, nobody can hinder it.
और इसलिए उसने ये जान लिया था कि पिता ने उसके लिए जो भी योजना बनाई है उसमें से कोई रुक नहीं सकती, कोई उसे रोक नहीं सकता.
I want you to look at John chapter 10.
यूहन्ना 10 अध्याय.
John chapter 10.
यूहन्ना 10 अध्याय.
16
वचन
Jesus said, I have other sheep which are not of this fold. I must bring them also. And they will hear my voice, and they become one flock with one shepherd. For this reason, the Father loves me, because I lay down my life so that I may take it again. No one has taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This commandment I receive from my father.
और वहां लिखा है 16 से आगे, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं।
verse 17
वचन,
think of it. So for this reason the father loves me, because I lay down my life so that I may take it again.
और पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं।
And I've often said, we all know John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son.
और हम सभी जानते हैं यूहन्ना 3:16 की, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
I think I've asked you this before.
और मैंने इसको पहले भी आपको पूछा।
How many of us know 1 John 3:16?
और पहला यूहन्ना 3:16 कितने आप जानते हैं?
Anybody?
कोई जानता है इस वचन को?
You read your Bible?
क्या आप अपने बाइबल को पढ़ते हैं?
How many of you know 1 John 3:16?
और कितने पहला यूहन्ना 3:16 को जानते हैं?
John 3:16 everybody knows.
यूहन्ना 3:16 सबको ही जानता है।
But 1 John 3:16.
लेकिन मैं पूछ रहा हूं, पहला यूहन्ना 3:16 कितने जानते हैं?
Nobody.
कोई नहीं?
Nobody. Very sad.
और ये दुख की बात है।
That means you're not reading your Bible.
मतलब आप अपना बाइबल को नहीं
properly
पढ़ते।
Turn there for a moment. We want to close in a few minutes, and I want you to just think of that.
और मैं कुछ मिनट में बंद करूंगा, उसके पहले मैं आप चाहता हूं कि इस बात को आप सोचे।
1 John 3:16.
पहला यूहन्ना 3:16.
Okay, shall we all read it together?
क्या हम साथ में इसको पढ़ सकते हैं?
Everyone, verse 16. You can read in Hindi or whatever language.
आप हिंदी में अपने अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं।
We know love by this. You got it? Now will you memorize that?
We know
love by this, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren.
और हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए.
And what did Jesus say in John chapter 10 that we read?
और जहाँ पे यीशु मसीह 10 अध्याय में यीशु मसीह यहाँ क्या कर रहे हैं?
For this reason,
और इसी कारण,
the Father loves me.
इसलिए इसी कारण से पिता मुझसे प्रेम रखता है।
Think of that, my brothers and sisters.
मेरे भाई और बहनें, इस बात को आप सोचें।
Every time you lay down your life,
और जितनी बार अपने आप जीवन को आप रख देते हैं, दे देते हैं,
sisters,
और भाई और बहनों के लिए,
or in any situation,
कोई भी परिस्थिति में,
you refuse to fight,
और आप इसको मना करते हैं कि आप वहां लड़ाई नहीं करेंगे,
you refuse to use words that will have a sting in it,
और ऐसे कोई भी शब्दों को उपयोग करने के लिए आप मना करते हैं, रोके रखते हैं अपने आप को,
and you decide, I'm going to lay down my life here.
और आप वहां निर्णय करते कि प्रभु मैं यहां अपना जीवन यहां समर्पण करूंगा.
What does it mean? I lay down my will. That's what it means.
और इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपनी इच्छा को यहां पर सौंपता हूं.
Remember John 10:17.
और यहां पे यूहन्ना 10:17 को आप स्मरण करें.
The Father loves me because I lay down my life so that I may take it again.
और पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर से ले लूं.
And God the Father gave Jesus the authority to lay down his life and to take it up again.
और पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया कि वो अपना प्राण दे और उसे फिर से ले ले.
He gives us that authority also.
और वो हमें भी वो अधिकार देता है.
To lay down our life.
और हमारे जीवन को हम दे.
I take it up again. It is a resurrection life.
और उसको वापस ले ले और वो एक पुनरुत्थान का जीवन होगा.
I refuse to lay down my life, I lose it, Jesus says.
और यदि मैं अपने जीवन को सौंपने से मना कर दूंगा तो उस जीवन को खो दूंगा.
I lose my opportunity of taking part in resurrection life.
और परमेश्वर के उस पुनरुत्थान में भाग लेने के अवसर को मैं खो दूंगा.
The Father gave Jesus commandment, you can lay down your life, you can take it up again.
और पिता ने यीशु मसीह को आज्ञा दिया कि तू अपना जीवन दे सकता है और उसे ले भी सकता है.
He had that authority in the garden of Gethsemane.
और उस गतसमनी के बाग के अंदर वो अधिकार उसके पास था.
When he agonized in prayer there.
और बहुत ही वेदना के साथ उसने उस प्रार्थना को जप किया.
And his father, if it's possible, let this cup pass from me.
और उसने कहा, पिता यदि हो सके तो प्याला मुझसे तू दूर कर.
I lived a perfect life on this earth. I pleased you.
और मैंने इस संसार के अंदर एक सिद्ध जीवन दिया है. मैंने तुझे प्रसन्न किया पिता.
You yourself testified, this is my beloved son in whom I am well pleased.
और तूने आप ही इस चीज की गवाही दी है कि मैं ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ.
But father, do I have to go through this?
लेकिन क्या पिता मुझे इससे गुजरना जरूरी है?
This separation from you.
प्रभु पिता तुझसे जो अलगाव होना है क्या उस ये जरूरी है?
Not the nails and the suffering and the pain.
और ये कीले या कांटे या ताज ये सब कुछ ये वेदना वो सब कुछ नहीं.
That is not what caused the agony.
और वो उतनी बड़ी वेदना उसके लिए नहीं थी.
To be separated from the father.
लेकिन पिता से अलग होना एक वेदना उसके लिए थी.
Experience hell for you and me on that cross.
और उस क्रूस के ऊपर मेरे और आपके लिए उस नरक का अनुभव उसने किया.
That is what he had before him.
और उस प्रकार उसने उस जीवन को दे दिया.
He had authority.
उसके पास अधिकार था.
To lay down his life.
उसने उस जीवन दे दिया.
He had the authority to take it up again.
और उसके पास वो अधिकार भी था कि उसको वापस वो ले ले.
He had gone straight back into heaven.
और वहां से वो स्वर्ग में उठाया गया.
I still remember brother Zach sharing that.
और मैं याद करता हूँ इस बात को brother Zach ने जो बताई.
He said when he agonized there and his sweat was like drops of blood.
और वहां पे उतनी वेदना थी कि उसकी जो पसीना था वो लहू बनकर टपक रहा था.
Your face.
और आपका चेहरा.
My face.
मेरा चेहरा.
Would have come before him.
उसके सामने आ रहा था.
Zach's face would have come before him.
और brother Zach का भाई का उनका चेहरा उनके सामने यीशु के सामने.
What will happen to Zach?
और brother Zach का क्या होगा?
The father would have taken him gladly back into heaven.
और पिता बहुत ही आनंद के साथ वहीं से उस गत्सेमनी बाग से उसको वापस ले सकता था यीशु को.
But you and I would be lost.
लेकिन अगर यदि ऐसा होता तो आप और मैं नाश हो जाते.
So he had the authority to lay it down, he had the authority to take it up again.
और उसके पास वो अधिकार था कि अपने जीवन को उस प्राण को दे दे और उसको वापस ले.
And God gave him a commandment.
और वहां पर परमेश्वर ने वहां आज्ञा दिया.
So God calls us to lay down as Jesus laid down his life for us, that we lay down our lives for one another.
और जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन अपना प्राण हमारे लिए दिया उसी प्रकार हम भी अपने प्राण को दे एक दूसरे के लिए.
Like I said just now, we cannot do that unless I really seek to be under the government of God.
और जैसे मैं पहले अक्सर कहता हूँ कि हम ये ऐसा नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम अपने आप को परमेश्वर की सरकार की अधीनता में नहीं लाते.
I really seek to be a man and a woman of authority.
और जब तक हम अधिकार के अधीनता में रहने वाले वो ये स्त्री या पुरुष नहीं बनते.
Like the centurion who saw Jesus as a man under authority. I hope my brothers and sisters, in the years that we have been in the church, we have learned what it is to be under authority.
और जैसे सुबेदार यीशु के सामने कहता है कि मैं मेरे ऊपर अधिकार में अधिकार के अधीनता में रहता हूँ. मैं आशा करता हूँ कि इस कलीसिया में रहते हुए हमने उस अधिकार के अधीनता में जीना सीखा है.
There will be a power that will be released through our lives.
और तब जब ऐसा होगा तो एक सामर्थ हमारे जीवन से प्रकट होगा.
And when we are under that authority, our prayers will also exercise that authority.
और जब हम उस अधिकार के अधीनता में होंगे तब हमारी प्रार्थना भी जो होगी उस अधिकार के अधीनता में उसका प्रयोग किया जाएगा.
Whatever we bind on earth shall be bound in heaven.
और जो भी हम संसार के अंदर इस जगत पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा.
Whatever we loose on earth shall be loose in heaven.
और इस पृथ्वी के अंदर हम जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा.
God has given us that authority to us.
और परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है.
On one condition.
एक शर्त पर.
I come under his authority.
जब मैं उसकी अधीनता उसके सरकार की अधीनता पर आ जाता हूँ.
And then I can experience God do things through my life and in my life that I have never experienced before.
और पहले कभी भी मैंने अनुभव नहीं है कि ऐसा जीवन परमेश्वर मेरे भीतर और मेरे जीवन के द्वारा मैं अनुभव करता हूँ.
What I share with you this evening is not just a message, it's been my life.
और ये जो आज मैं आप शाम को बांट रहा हूँ ये कोई एक संदेश महज नहीं है लेकिन ये मेरा जीवन मैं आपके साथ बांट रहा हूँ.
When we pray, we can see God answer our prayers. I'm not saying we can ask for this and that, but when we pray, Your will be done on earth as it is in heaven.
और जब हम प्रार्थना करते हैं हम जरूर पाते हैं कि प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस धरती में तेरी हो जाए पूरी.
Yeah, we'll continue on tomorrow a little more on this, but I really believe that God is calling us as a church, and God is calling us as His disciples, as His sons and daughters, to really come under the government of God.
और आगे के दिनों में भी हम इसको देखेंगे लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कलीसिया के नाते उसके बेटे और बेटी होने के नाते हमें उसके अधिकार के अधीनता में जीने के लिए हमें वो बुला रहा है.
Let's pray.
आइए प्रार्थना करें.
Our Heavenly Father.
हे स्वर्गीय पिता,
हैलोड बी योर नेम,
तेरा नाम पाक माना जाए.
सेपरेट योर नेम फादर फ्रॉम ऑल द अदर नेम्स ऑन दिस अर्थ.
प्रभु, हर नाम जो इस संसार में पाया जाता है, उस नाम से प्रभु तेरे नाम को आप अलग करें.
मे योर गवर्नमेंट कम अपॉन अस एंड ओवर अस एज इट इज इन हेवन.
प्रभु, तेरा राज्य, तेरी सरकार जैसे प्रभु स्वर्ग में पाई जाती है, वैसे हमारे जीवनों के ऊपर भी उतर आए.
मे योर विल बी डन इन आवर लाइव्स एज इट इज बीइंग डन इन हेवन राइट नाउ.
और प्रभु, जैसे स्वर्ग में प्रभु आपके राज्य में आपकी इच्छा पूरी होती है, हमारे जीवनों में भी उसी प्रकार पूरी हो.
Because yours is the government, yours is the power, प्रभु, and yours is the glory forever.
और आप ही का राज्य, आप ही का पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा आपका है.
Glorify the name of Jesus.
और यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा मिले.
In our lives and in our church.
और प्रभु, हमारे जीवनों में, हमारी कलीसियाओं में.
And let your power be loosed, released through the church in these days.
और प्रभु, आपकी कलीसियाओं के द्वारा प्रभु एक सामर्थ्य इन दिनों के अंदर प्रभावित हो सके.
For your name's sake.
प्रभु, आपके नाम के लिए.
Amen.
आमीन.